नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में नीति आयोग के 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। बैठक में देशभर में उद्यमिता और कौशल विकास को बढ़ावा देने तथा रोजगार के स्थायी अवसर सृजित करने के उपायों पर विचार विमर्श किया जाएगा। चर्चा में शासन, डिजिटल सार्वजनिक ढांचे और साझेदारी सहित प्रमुख मुद्दों के समुचित कार्यान्वयन की रूपरेखा तैयार करने पर भी ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इस वर्ष की बैठक का विषय है 2047 तक विकसित भारत के लिए समावेशी मानव विकास। बैठक में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, राज्यपाल और उपराज्यपाल भाग ले रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा है कि देश के 140 करोड़ नागरिकों की आकांक्षाएं अवश्य पूरी होंगी। श्री मोदी ने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए ने हमेशा देश के भरोसे को मजबूत किया है। नई दिल्ली में भारत मंडपम में आयोजित एनडीए सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पिछले 12 वर्षों में 25 करोड़ से अधिक लोगों का गरीबी से बाहर आना सरकार की सही नीतियों और सही दिशा का प्रमाण है।
एनडीए सरकार के इन 12 वर्षों में 25 करोड़ से ज्यादा लोगों का गरीबी से बाहर निकलना, ये दिखाता है कि हमारी नीतियां सही है, हमारी दिशा सही है। ये सफलता आज देश के हर उस व्यक्ति को एक भरोसा देती है कि एक न एक दिन उसका संघर्ष भी खत्म होगा, एक दिन उसके सपने भी पूरे होंगे।
श्री मोदी ने कहा कि वैश्विक आर्थिक चुनौतियों के बावजूद भारत ने वर्ष 2025-26 में 7.7% की विकास दर हासिल की है। प्रधानमंत्री ने आज कहा कि किसानों का कल्याण सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है और सरकार उनके जीवन को सुगम बनाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि किसान देश के खाद्य सुरक्षा, पोषण और समृद्धि की रीढ़ हैं। प्रधानमंत्री ने इस बात पर प्रकाश डाला कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि और फसल बीमा योजना जैसी पहले न केवल किसानों की आय की रक्षा कर रही हैं बल्कि कृषि को और भी सशक्त बना रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के लगातार सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री बनने की उपलब्धि पर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने बधाई दी है। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और बुल्गारिया के संबंध दीर्घकालिक और स्थिर हैं। दोनों देश मिलकर भविष्य में संबंधों को और अधिक गतिशील तथा बेहतर रूप देंगे। उन्होंने बुल्गारिया के विदेश मंत्री से मुलाकात के दौरान ये बात कही। डॉ जयशंकर ने बताया कि भारत और बुल्गारिया द्विपक्षीय सहयोग, भारत और यूरोपीय संघ के बीच साझेदारी और वैश्विक स्थिरता तथा प्रगति के लिए मिलकर काम करने पर सहमत हुए हैं। डॉ जयशंकर ने कहा कि आर्थिक सुरक्षा और आतंकवाद के बढ़ते खतरे पर भारत का रुख स्पष्ट है। भारतीय वाणिज्य मंडल आईसीसी ने पश्चिम बंगाल में अपनी सदस्य कंपनियों के माध्यम से 1,00,000 करोड़ रुपए के निवेश को बढ़ावा देने की योजना बनाई है। इस प्रस्ताव पर नई दिल्ली में आईसीसी के अध्यक्ष ब्रजभूषण अग्रवाल के नेतृत्व वाले प्रतिनिधिमंडल और केंद्रीय मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह के बीच बैठक में चर्चा की गई। आईसीसी ने कहा कि पश्चिम बंगाल में सकारात्मक स्थिति बनी हुई है जिससे आर्थिक वृद्धि को गति मिलेगी और निवेश को लेकर राज्य की पहचान मजबूत होगी। अमेरिका ने ईरान पर हाल ही में सैन्य हमले किए हैं। जवाबी कार्रवाई में ईरान ने होर्मुज जलडमरू मध्य बंद करने की घोषणा की है और क्षेत्र में अमरीकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है। अमरीका की केंद्रीय कमान ने कहा कि अमरीका ने आत्मरक्षा में लगातार दूसरे दिन हमले किए। इनमें ईरान की वायु रक्षा प्रणालियों, रडार और संचार ढांचों को निशाना बनाया गया। हमारे संवाददाता ने बताया कि ईरान की मीडिया ने बंदराबास, केशम द्वीप, बिनाब और सिरिक सहित कई स्थानों पर विस्फोट की सूचना दी है। अमर शहीद पंडित राम प्रसाद बिस्मिल की आज जयंती है। इस अवसर पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला और गृहमंत्री अमित शाह ने श्रद्धांजलि अर्पित की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री बिड़ला ने कहा कि बिस्मिल ने भारत की स्वतंत्रता के लिए अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया। श्री शाह ने कहा कि राम प्रसाद बिस्मिल ने काकोरी ट्रेन कांड के माध्यम से ब्रिटिश राज की नींव हिला दी थी। मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, केरलम, माहे, ओडिशा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम के कुछ क्षेत्रों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, पंजाब, उत्तराखंड में ओलावृष्टि के साथ वर्षा का अनुमान है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।